वेद है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन, सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोता, कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से मीका नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है न्याय और राज्य। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी अपने परिवार के प्रिय सदस्यों के साथ कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से मीका नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम सबने देखा है कि किस प्रकार मीका इसराइलियों को आगाह करता है कि वे गरीबों को न सताएं और परमेश्वर इसके लिए उन्हें दंड भी देगा। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आज के वचन में परमेश्वर का दास हमें क्या बताना चाहता है। लेकिन इससे पहले हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थी वचन के लिए, जिसके द्वारा आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं, हमें समझाते और सिखाते हैं, हमें सही मार्ग दिखाते हैं। आज जब हम फिर से आपके जीवित वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से कर रहे हैं, हमारे श्रोता भाई बहन आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि हर एक जब आपके वचन को सुनता है तो आपका वचन उनके जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए, आपके सत्यता को वे समझ सकें, उनके आत्मिक आंखों को आप खोल दीजिए ताकि आपके प्रेम को देखने पाए। पिताजी, इस घड़ी जब हम मीका नबी की पुस्तक से सीखना चाहते हैं, आप हम सब की सहायता करें। और हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय निराश हैं, परेशान और चिंता में हैं, तनाव में हैं, आप उन्हें भी अपनी शांति प्रदान करें, उनके जीवन के जरूरतों को आप पूरा करें। आज के अध्ययन पर हर एक को आप आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम सब इन दिनों मीका नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। मीका कहता है कि इसराइल ने रेखा पार कर ली है, अब उनके लिए आशा नहीं है, उन्हें दंड अवश्य ही दिया जाएगा। परमेश्वर उनके गले में ऐसा फंदा डालेगा कि वे कहेंगे हम सर्वनाश हुए, उनका घमंड टूट जाएगा और अकड़ी हुई गर्दन फिर न उठेगी। उस समय वहां परमेश्वर की आराधना नहीं होगी। परमेश्वर उन पर जो विपत्ति डालेगा उसके विषय में वे आश्चर्यचकित होकर सोचेंगे कि क्या परमेश्वर ने यह किया है। वे परमेश्वर की प्रजा थे, परंतु उनका व्यवहार परमेश्वर के बैरियों का सा था। वे परमेश्वर की प्रजा के गरीबों को लूटते थे और उनके बच्चों से परमेश्वर की दी हुई उत्तम वस्तुएं भी छीन लेते थे। उनके भविष्यद्वक्ता उनके कुकर्मों का अनुमोदन करते थे। वे उन्हें अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें बोलकर बहलाते थे और यही कारण है कि इसराइल दंड का भागी हुआ। मेरे प्रियो, आज हम अपने अध्ययन को मीका नबी की पुस्तक उसके 3 अध्याय से आरंभ करेंगे। इस अध्याय का विषय है अगुओं को पाप की झिड़की। मेरे मित्रों, मीका का यह 3रा संदेश है। मीका पहले इस्राएल के अगुओं को पाप के लिए झिड़कता है, उनके प्रधानों को, उनके धार्मिक अगुओं, भविष्यद् वक्ताओं को, और उसके बाद यरूशलेम के प्रधानों, भविष्यद् वक्ताओं और याजकों को। तो आइए हम सब देखते हैं प्रधानों के पाप। अन्य मुख्य अध्यायों के समान यह अध्याय भी सुनने की पुकार से आरंभ होता है। आइए हम पढ़ते हैं मीका नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसके 1 पद। 3 अध्याय के 1 पद में लिखा है, मैंने कहा, हे याकूब के प्रधानों, हे इस्राएल के घराने के न्यायियों, सुनो, क्या न्याय का भेद जानना तुम्हारा काम नहीं? ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा हुआ है, मैंने कहा, हे याकूब के प्रधानों, सुनो, क्या देश के अगुओं से वह कह रहा है? जी हां, क्या न्याय का भेद जानना तुम्हारा काम नहीं? उसके ऐसा कहने का क्या अर्थ है? वह यहां पर इस्राएल के शासकों, न्यायियों और जनपदाधीशों को कह रहा है जो इस्राएल पर शासन कर रहे हैं। जब कोई किसी अपराध में पकड़ा जाता तो उसे इन्हीं लोगों के समक्ष न्याय के लिए लाया जाता था। इसलिए वे इस बात को निश्चित रूप से जाने कि सच्चा न्याय और सत्यता क्या है। इस्राएल के न्यायियों में न्याय और विवेक का अंतःकरण होना आवश्यक था कि किस अपराधी के साथ कैसा व्यवहार करें। इसी विचार को हम नए नियम में भी पाते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय 2 उसके पद 1 में पौलुस इसी विचार को व्यक्त करता है। कहता है, हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों न हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। लिखा है उसी बात में। उसी बात में कहने का अर्थ समान नहीं परंतु सदृश्य है। इसका उदाहरण हम 2 शमूएल की पुस्तक 12 अध्याय में पाते हैं। नातान भविष्यद्वक्ता राजा दाऊद के समक्ष आया और उसके राज्य के एक धनवान मनुष्य के बारे में उसे बताया जिसके पास बहुत भेड़ें थी, परंतु अपने अतिथि के लिए उसने अपने गरीब पड़ोसी की एकमात्र प्रिय भेड़ लेकर काट दी और उसे भोजन करवाया। यह सुन दाऊद ने क्रोध से भरकर उस मनुष्य को दंड देने की घोषणा की। दाऊद को दूसरे का दोष दिखा परंतु वह उसी बात का दोषी था। नातान ने दाऊद से कहा कि वह मनुष्य है। इस घटना को हम 2 शमूएल के पुस्तक 12 अध्याय उसके 7 पद में पाते हैं। दाऊद ने परमेश्वर के समक्ष अपना अपराध स्वीकार किया। दूसरे का अपराध दिखाई देता है, अपना नहीं। परमेश्वर इस्राएल के अगुओं से कहता है, तुम दूसरों का न्याय करते हो परंतु तुम स्वयं उसी अपराध के दोषी हो। मेरे प्रियो, यह इस्राएल के समय की बात है, घटना है, परंतु आज भी हमारे वर्तमान समय में हमारे समाज में यही बात हम देखते हैं। आज हमारे समाज की भी यही दशा है। हम दूसरे का दोष छिपाना चाहते हैं क्योंकि हमारा विवेक हमें दोषी ठहराता है। न्याय करने के लिए मनुष्य को चरित्रवान होना होता है। जब तक आप चरित्रवान नहीं हैं, आप दूसरों का न्याय नहीं कर सकते हैं। कहा जाता है कि जब हम एक उंगली दूसरों की ओर उठाते हैं तो तीन उंगली हमें ही इंगित करती है, अर्थात हम एक को दोषी ठहराते हैं तो तीन हमें दोषी ठहराते हैं। मीका इसराइल के अगुओं से कहता है, क्या न्याय का भेद जानना तुम्हारा काम नहीं? अनजान मत बनो, तुम्हें अनुभव है, तुम दूसरों का न्याय करते हो, परंतु तुम स्वयं दोषी हो। आज संसार में हम ऐसा ही होते हुए देखते हैं, जो हमें दोषी बनाता है। मेरे प्रियो, मैं आपके जीवन की बातों को नहीं जानता, परंतु मैं इस बात को अवश्य जानता हूं कि हम जिस देश में रहते हैं, जिस पृथ्वी पर रहते हैं, बहुत अधिक दोषी हो चुका है, बन चुका है। हम प्रतिदिन समाचार पत्रों में और यहां तक कि हम टीवी के समाचारों में देखते हैं कि प्रतिदिन दोष बढ़ता ही जा रहा है। एक व्यक्ति दूसरे पर आरोप लगाता है और यह कम नहीं परंतु बढ़ता जा रहा है। और यही कारण है कि यहां पर भी मीका इसराइलियों से कहता है कि क्या न्याय का भेद जानना तुम्हारा काम नहीं। मीका 3:2 में आगे लिखा है, तुम तो भलाई से बैर और बुराई से प्रीति रखते हो, मानो तुम लोगों पर से उनकी खाल उधेड़ लेते और उनकी हड्डियों पर से उनका मांस नोच लेते हो। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा है, तुम जो भलाई से बैर और बुराई से प्रीति रखते हो। मुझे एक घटना याद आती है कि एक महिला एक शराबी के कार से कुचलकर मर गई। उसका बेटा तब तो चुप रहा, परंतु जब उसे न्यायालय के पास बुलाया गया, अर्थात न्यायालय में उसे बुलाया गया, तब उसने कहा कि अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, परंतु वह कार चालक छोटा सा दंड पाकर बच गया। बाद में उसे पता चला कि न्यायाधीश स्वयं शराब पीते हैं, तो उनका विवेक शराब पीने वाले को दोष नहीं देता है। मेरे मित्रों, मीका के युग में अगुए भलाई से बैर रखते थे और बुराई से प्रीति रखते थे। ऐसे अगुए न तो उस समय और न आज देश की अगुवाई के योग्य हैं। नैतिकता में पतन का कारण है नियम बनाने वाले। जी हां, परमेश्वर ने मीका के युग में इसराइल के अगुओं को दोषी ठहराया था, जैसा कि हमने देखा है। मीका की पुस्तक में परमेश्वर मानवीय सरकार की राजनीति को स्पष्ट कर रहा है। अगुओं को चरित्रवान होना है, चाहे कोई भी वह क्यों ना हो। लिखा है, तुम लोगों पर से उनकी खाल उधेड़ लेते और उनकी हड्डियों पर से उनका मांस नोच लेते हो। गरीबों के साथ उनके पार्श्विक व्यवहार का वर्णन है यह। क्या आज के युग में कुछ परिवर्तन आया है? शायद नहीं। आज भी गरीब दोषी ही होता है और अमीर बच निकलता है, क्योंकि कानून उन्हें कुछ नहीं करती, वे ही उसे तोड़ते हैं जो उसे बनाते हैं। मीका नबी की पुस्तक 3:3 में लिखा है, वरन तुम मेरे लोगों का मांस खा भी लेते और उनकी खाल उधेड़ते हो, तुम उनकी हड्डियों को हांडी में पकाने के लिए तोड़ डालते और उनका मांस हंडे में पकाने के लिए टुकड़े टुकड़े करते हो। दूसरे शब्दों में, वे नरभक्षी हैं। उनके जीवन में न तो कोई सिद्धांत है और न ही दया भाव है। मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि कोई अभक्त मनुष्य कभी मेरा न्याय करे। न तो मैं आपके सामने न्याय के लिए खड़ा हूं और न आप मेरे सामने न्याय के लिए कभी खड़े हों। मनुष्य की अपेक्षा प्रभु ईश्वर के समक्ष न्याय के लिए खड़ा होना ही अच्छा है। मेरा मुद्दा तो पहले ही प्रभु यीशु के सामने रखा जा चुका है। मुझे मनुष्य के समक्ष न्याय के लिए खड़ा नहीं होना है। यह मेरे लिए एक शांतिदायक बात है, परंतु आपके लिए क्या है? क्या आप यीशु के न्याय सिंहासन के समक्ष खड़े हो सकेंगे? क्या आप उसके सामने अपने आप को प्रमाणित करने पाएंगे? मेरे मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन के उन बुराइयों को छोड़कर सत्यता को ग्रहण करें। इस्राएली इस बात को भूल चुके थे, परंतु गरीबों को लूट रहे थे, गरीबों को सता रहे थे, और यही कारण है कि परमेश्वर उनसे कहता है कि वह उनका न्याय करेगा, उनको दंड देगा। मीका 3 अध्याय के 4 पद में आगे लिखा है, वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे, परंतु वह उनकी न सुनेगा, वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह मोड़ लेगा। ध्यान दीजिए, भविष्यद्वक्ता किसकी चर्चा कर रहा है? वह इस्राएल के अगुओं के विषय में कह रहा है। जब तक वे अपने ऊंचे पदों पर बैठे हैं, उनमें न तो मनुष्य के लिए मान सम्मान था और न ही सहानुभूति और प्रेम था। अब वे संकट में थे, क्योंकि उनसे अधिक शक्तिशाली कोई आ गया है। लिखा है, वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे, परंतु वह उनकी न सुनेगा। संकट के समय वे परमेश्वर को पुकारेंगे। मेरे प्रियो, यह एक रोचक बात है। हम सब भी संकट के समय परमेश्वर को याद करते हैं। मुझे आश्चर्य तो नहीं होना चाहिए, परंतु होता है। जब विपत्ति को देख हम कहते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करे। रोचक बात तो यह है कि वर्षों पूर्व हमने परमेश्वर को उसी के संसार से बाहर कर दिया। हम निंदा करते हैं, हम निंदा की अपेक्षा परमेश्वर का नाम नहीं लेते हैं, परंतु कष्टों में परमेश्वर ही को हम याद करते हैं। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता कि परमेश्वर आपकी आवाज सुनेगा या नहीं, क्योंकि मीका के दिनों में, उसके युग में भी ऐसे लोग थे, तो उनके ऐसे ही व्यवहार के कारण परमेश्वर ने कहा था कि वह उनकी पुकार नहीं सुनेगा। जो परमेश्वर के बिना जीवन जीते हैं, वह उनकी पुकार नहीं सुनेगा। जो उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, वह उनकी पुकार नहीं सुनेगा। सच तो यह है कि उसने कहा था कि वह उनसे अपना चेहरा छिपा लेगा। आज परमेश्वर चुप है। ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर संसार की स्थिति में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, परंतु उसका अनुग्रह बहुत है और वह उसके मानने वाले तथा प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने वालों के प्रति दया का धनी है। जी हां, वह धनी है। क्या आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है? क्या आप उद्धार पा चुके हैं? क्योंकि वह उन्हीं की सुनता है जो यीशु को ग्रहण करते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम देखते हैं कि भविष्यद वक्ताओं के क्या पाप थे। मीका नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, यहोवा का यह वचन है कि जो भविष्यद वक्ता मेरी प्रजा को भटका देते हैं और जब उन्हें खाने को मिलता है तब शांति शांति पुकारते हैं, और यदि कोई उनके मुंह में कुछ ना दे तो उसके विरुद्ध युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, उनके भविष्यद्वक्ता विषैले सांप से भी अधिक भयानक और खतरनाक थे। वे उन्हें शांति की झूठी सांत्वना दे रहे थे। वे मीठी मीठी शब्दों का प्रयोग कर उन्हें सांत्वना दे रहे थे कि शांति आने वाली है। वास्तव में वे जहर घोल रहे थे। मेरे मित्रों, मनुष्य अपने प्रयासों से संसार में शांति नहीं ला सकता है। हमें इस भ्रम के प्रति सतर्क रहना है। शांति की आशा करना और अपने वोट देने से शांति नहीं आएगी। मीका कहता है कि समस्या सतही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य शांति नहीं चाहता। समस्या तो यह है कि मनुष्य का मन दुष्ट है। जी हाँ, मनुष्य का मन दुष्ट होता जा रहा है। यशायाह नबी की पुस्तक 57 अध्याय के 21 पद में परमेश्वर कहता है कि दुष्ट के लिए शांति नहीं है। अपनी भविष्यवाणी के अंत में यशायाह ने इस तथ्य को 3 बार दोहराया है। उसने तीनों बार यही पाया कि समस्या मनुष्य के अंदर में है। मनुष्य के मन में दुष्टता व्याप्त है। जब मैं कहता हूं कि हम इस युग में शांति नहीं पाएंगे तो लोग मुझे सुंदर पत्र लिखकर झिड़कते हैं और मुझे निराशवादी कहते हैं। वे कहते हैं कि हमें शांति लाने का प्रयास करना चाहिए। वे मन से चाहते हैं और उनका सोचना भी उचित है, परंतु मनुष्य शांति ले आए यह एक भ्रम है। मैं भी अन्यों के समान शांति चाहता हूं, परंतु मैं परमेश्वर के मार्ग का अनुसरण करना चाहता हूं, उसके तरीके से शांति पाना चाहता हूं। सबसे पहले तो हमें जानना है कि परमेश्वर की शांति क्या है। हम यह कैसे जानेंगे? रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसके 1 पद में पौलुस कहता है कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाकर हमारे प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ हमें शांति प्राप्त होती है। जब तक आपको परमेश्वर के साथ शांति प्राप्त नहीं होती, आपको मनुष्यों के साथ भी शांति प्राप्त नहीं होगी। मनुष्य का मन विश्वास योग्य नहीं है, वह दुष्ट है। इसीलिए यर्मिया भी कहता है 17 अध्याय उसके 9 पद में, हम नहीं जानते कि हम कैसे दुष्ट हैं। हम पृथ्वी पर किसी भी प्राणी से अधिक पतित हो सकते हैं। जी हां, यह एक प्रमाण है कि मनुष्य पशु से विकसित नहीं हुआ है। पशु शराब नहीं पीते, वे अपनी पत्नियों को नहीं मारते, वे अपने बच्चों को गालियां नहीं देते। मनुष्य इससे पहले कि संसार में शांति लाए, उसे परमेश्वर के साथ शांति स्थापित करना है, क्योंकि मनुष्य स्वयं से शांति स्थापित नहीं कर सकता। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 27 पद में यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, इसलिए तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। यीशु अपनी शांति हमें देता है। संसार की शांति क्षणिक है, परमेश्वर की शांति हमेशा बनी रहती है। आज लोग शांति पाने के लिए भटक रहे हैं, क्योंकि गलत स्थानों में वे ढूंढ रहे हैं। मीका के युग में इसराइल के भविष्यद्वक्ता देश को झूठी शांति की सांत्वना दे रहे थे, जबकि उत्तर दिशा में अश्शूर उन पर आक्रमण करने की तैयारी में था। आज विभिन्न राष्ट्रों के मध्य शांति वार्ताएं तो हो रही हैं, परंतु 6000 वर्षों का इतिहास युद्धों की गाथा हमें सुनाता है। देश पर देश चढ़ाई करता है, जाति पर जाति और परिवार पर परिवार चढ़े आते हैं, यहां तक कि मनुष्य मनुष्य से लड़ता है। ऐसा क्यों है? यह जानते हुए भी कि इससे कोई लाभ नहीं, हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, दोष पर दोष लगाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के विद्रोही हैं। हम वास्तविक समस्या का सामना करने की अपेक्षा झूठे भविष्यद्वक्ताओं की बातें मानते हैं, जो शांति की झूठी प्रतिज्ञा करते हैं। परमेश्वर इसराइल पर आने वाली विपत्ति की घोषणा करता है। यह सब कुछ कब होता है? जब मनुष्य परमेश्वर की ओर नहीं फिरता है, उसकी नहीं सुनता है, आदर नहीं देता है, तो आखिरकार परमेश्वर को उनके पाप के प्रति दंड की घोषणा करना पड़ता है। मेरे मित्रों, हमारे जीवन में भी पाप और बुराइयां हैं। परमेश्वर हमें भी सुधरने का मौका देता है, वापस लौटने का अवसर देता है कि हम उसके अनुग्रह को पहचान कर उसकी ओर लौट आएं और उस बड़े दंड से बच जाएं जो उसने नूह के समय बाढ़ के द्वारा मनुष्यों को नाश किया, सदोम अमोरा नगर को नाश किया। आज वह नाश नहीं करना चाहता है, परंतु हमें बचाना चाहता है। लेकिन हम प्रतिदिन कठोर और दुष्ट बनते जा रहे हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का डर नहीं दिखता है, तो परमेश्वर आपके साथ क्या करेगा? मेरे मित्रों, आइए हम अपने आप को नम्र करें, दीन करें और परमेश्वर की ओर फिरें, ताकि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में, मोहल्ले में, शहर में और अपने देश में शांति को प्राप्त कर सकें। यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबको बहुतायत से सहायता प्रदान करे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
अगर हमको